ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आर्थिक सुधार अभियान में सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जताई प्रतिबद्धता। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में गोविंद बहादुर कार की नियुक्त। निजामती कर्मचारी अस्पताल के 8 कर्मचारियों के खिलाफ लगभग 3 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने उद्योग, व्यापार, निवेश, वातावरण और आर्थिक सुधार से जुड़े मुद्दों पर निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। आज प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और उन्हें सशक्त बनाने, उद्योग व्यवसाय संचालन को अधिक सुगम बनाने, निवेश अनुकूल माहौल तैयार करने, नीतिगत एवं प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने, निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने तथा रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि के विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि देश के आर्थिक विकास, निवेश विस्तार, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि में निजी क्षेत्र सरकार का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि उद्योग व्यवसायियों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उद्योग और निजी क्षेत्र के अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक सुधार के अभियान में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बैठक से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित निकायों के माध्यम से आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन, निवेश विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा विवरण को सरल बनाने तथा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच नियमित एवं परिणाम उन्मुख संवाद की आवश्यकता पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। सरकार ने गोविंद बहादुर कार्की को नेपाल सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव गोविंद बहादुर कार्की को मुख्य सचिव नियुक्त करने का निर्णय किया। ये जानकारी बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। मंत्रिपरिषद बैठक ने कैलाली स्थित गेटा अस्पताल को शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में संचालित करने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बैठक ने काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण के विकास आयुक्त के पद पर काठमांडू के सूरज शाखे की नियुक्ति, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन एवं नियमन नियमावली 2083 तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण एवं तैयारी कक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2083 को मंजूरी देने सहित अन्य निर्णय भी किए। ये जानकारी शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल राष्ट्र बैंक तृतीय संशोधन विधेयक 2083 और पर्यटन विधेयक 2082 को दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समितियों में भेजा है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत नेपाल राष्ट्र बैंक तृतीय संशोधन विधेयक और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल द्वारा प्रस्तुत पर्यटन विधेयक को स्वीकृत किया गया। बैठक में प्रतिनिधि सभा के सचिव प्रकाश अधिकारी ने विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश की जानकारी दी। बैठक के दौरान सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने नेकपा एमाले के सांसद राजेंद्र राय के वक्तव्य को संसद की कार्यवाही से हटाने का निर्देश किया। सभामुख अर्याल ने सांसद राय की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्हें मर्यादा में रहकर बोलने का निर्देश दिया और आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद एमाले के सांसद विरोध में अपनी सीटों से खड़े हो गए। सभामुख ने कहा कि कुछ सांसदों ने बोलते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे सभामुख के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा की सांसद ज्वाला संग्रौला ने भी सांसद राय की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उसे संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की। सांसद राय की टिप्पणी के बाद सदन में विवाद उत्पन्न होने पर सभामुख ने पहली बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बाद में शुरू हुई दूसरी बैठक में उन्होंने सांसद राय की पूरी टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने का निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होते ही आज भी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा नेपाल भारत सीमा संबंधी दिए गए बयान को वापस लेने और उसमें संशोधन करने की मांग करते हुए विरोध में खड़े हो गए। बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। इसी बीच 15 मिनट के लिए स्थगित की गई प्रतिनिधि सभा की दूसरी बैठक को विशेष कारणों से निर्धारित समय पर संचालित नहीं किया जा सका। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बैठक को सूचना जारी कर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा जारी सूचना में इसकी जानकारी दी गई। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने धनुषा स्थित राम जानकी मंदिर सहित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र की गुठी भूमि के संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाने के लिए गुठी संस्थान के प्रधान कार्यालय के गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरे की संयोजकत्व में 9 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। मंत्रालय के अनुसार समिति को बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालाबों, उनके किनारों, राम जानकी मंदिर सहित प्रमुख मठ मंदिरों तथा गुठी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर 15 दिनों के भीतर प्रगति प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। समिति उच्च स्तरीय कार्यदल 2062 की रिपोर्ट, सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी भूमि संरक्षण संबंधी जांचबूझ आयोग 2076 की रिपोर्ट तथा गुठी भूमि से संबंधित अन्य प्रतिवेदनों में उल्लिखित सिफारिशों और कार्यों को भी लागू करेगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने निजामती कर्मचारी अस्पताल नया बानेश्वर काठमांडू की फार्मेसी यूनिट इंचार्ज एवं फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुंगाना सहित 8 लोगों के खिलाफ 2,91,34,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुंगाना के अलावा फार्मेसी सहायक लवेंद्र कुंवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पंत, फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटा, स्टोर कीपर एवं वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल और शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक केशव राज न्यौपाने और संदीप तिवारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्री मामले में नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अनुमति दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौड़ेल और विदुर कोरला की पीठ ने आज ये आदेश जारी किया। सिंगदरबार स्थित सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से असक्त वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग सेवाग्राहियों तथा सरकारी कर्मचारियों की सुगम आवाजाही के लिए व्हीलचेयर और सहायक सेवा शुरू की गई है। सेवा का उद्घाटन करते हुए मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने कहा कि अब सार्वजनिक सेवाएं लेने वाले नागरिकों और कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों को शारीरिक स्थिति के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धरान स्थित वीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से 10 बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के प्रमुख केशव कुमार थेवे के अनुसार इन लोगों पर प्रतिष्ठान में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को विभिन्न निजी मेडिकल स्टोरों से सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने का लालच देकर अवैध कमीशनखोरी करने का आरोप है। गत 21 आषाढ़ को गृहमंत्री सुदन गुरुंग और स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए अस्पताल परिसर में सक्रिय बिचौलियों, अनियमितताओं और मरीजों के साथ होने वाली ठगी पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए युद्ध विराम को समाप्त घोषित करते हुए कहा है कि अब अंतरिम शांति समझौता प्रभावी नहीं रहा। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं किया और आगे बढ़ने का फैसला तेहरान को करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि ईरान चाहे तो भविष्य में बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान को कड़ा संदेश देना था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आर्थिक सुधार अभियान में सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जताई प्रतिबद्धता। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में गोविंद बहादुर कार की नियुक्त। निजामती कर्मचारी अस्पताल के 8 कर्मचारियों के खिलाफ लगभग 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।